परंतु यहाँ अभी भी लगता है कि बहुत ही सुंदर बेहद के परिवार में आ गए हैं। और बाकी भी परसों जब बाप दादा की पधरामनी होंगी, मैं समझती बिल्कुल लास्ट तक हॉल फुल हो जाएगा। अभी तो हॉल आधा फुल है तो भी बहुत ही सुंदर लग रहा, परंतु दो दिन में तो फिर बाकी भी लास्ट तक ही फुल होगा। ये बाबा का जादू का खेल कहेंगे कि किस तरह से बाबा ने इतने सुंदर स्थान बना के हम सबकी पालना बाबा कर रहे हैं। कितने वर्षों से पालना शुरू हुई और आज तक भी पालना होती रही है। कई बाबा के बच्चे आज ही पहुंचे हैं तो उनका भी स्वागत, परंतु जो कल यहाँ पर थे उन्होंने एक विशेष अव्यक्त रिविजन कोर्स की मुरली सुनी होंगी। वो भारत के सेंटर्स पर नहीं गई है तो शायद अन्य आत्माओं ने जो आज पहुंचे हैं उन्होंने नहीं सुनी है, परंतु उस मुरली के आधार पर ही मैंने अभी का टॉपिक ढूंढा, संपन्नता के समीप। क्यों? क्योंकि वो समय था, कईयों को याद भी होगा, कि दिसंबर 98 में कुछ विश्व में हलचल हो रही थी। वो ये थी कि जब वर्ष 2000 आकर पहुंचेगा तो कंप्यूटर सिस्टम्स में उन्होंने 2000 का हिसाब नहीं रखा था, उन्होंने 19 का भी नहीं रखा था, जो लास्ट दो डिजिट्स है उसका रखा था। तो फिर ये हवा फैली हुई थी कि जिस घड़ी वो चेंज होगा तो 31 दिसंबर 1999 और 1 जनवरी 2000 में, उस बीच में आप सोचो कि हर चीज आजकल कंप्यूटर के द्वारा होती। आप लोग जो ये आवाज भी सुन रहे हैं, सिर्फ लाउड स्पीकर नहीं है परंतु यहाँ कितनी कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो भी कंप्यूटर्स का ही सारा कारोबार चलता है। और जो आप ट्रेन पकड़ते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, प्लेन पकड़ते हैं, सब कुछ कंप्यूटर्स, बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटर्स, मीन्स सारे विश्व का आधार कंप्यूटर्स का हो गया है। तो उस समय भी ऐसे ही संसार की हालत थी, परंतु लोगों को ये मन में एक भय था कि पता नहीं क्या होगा। तो बाबा उस बात को लेकर के 1999 में हम बच्चों को क्या करना है, सारी मुरली बाबा ने उस बात पर उठाई है। और उसमें भी खास बाबा ने ये हम सबको चांस दिया है, और ये तो 16 साल पहले की बात है, अभी तो 16 वर्ष उसके बाद भी बीत चुके हैं, परंतु बाबा ने कहा है उस मुरली में, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन में आओ, चाहे आप सेकंड डिवीजन में आओ, चाहे आप थर्ड डिवीजन में आओ, कौन डिसाइड करेगा? बाबा डिसाइड करेगा? ड्रामा डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? खुद। बाबा हमेशा कहते हैं कि खुद के परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता। तो इस बात को उठा करके बाबा ने खास ये बात कही है कि 1999 में विश्व में जो कुछ होगा वो तो देख ही लेंगे, परंतु आप बच्चों को 108 में आना है तो किस प्रकार का पुरुषार्थ हो फर्स्ट डिवीजन का, और यदि 16,000 में आना है तो फिर वो सेकंड डिवीजन, और फिर आप सोच लो प्रजा 9 लाख, वो तो फिर बाबा कहते हैं थर्ड डिवीजन। तो बाबा ने ज्यादा टाइम इन बातों में नहीं बताया, सिर्फ एक सेंटेंस में ये बात बताई, परंतु उसी से ही पता चला कि अभी तक भी हर प्रकार की चॉइस हम सबके सामने है। अभी जो हम अपने संकल्प को दृढ़ रखते हैं, श्रेष्ठ बनाकर रखते हैं, और बाबा से शक्ति हर रोज लेकर उसको स्नेह का पानी देते रहते हैं, वो हमारा संकल्प अवश्य ही पूर्ण होगा। आप लोगों ने देखा होगा दादी जान की हमेशा ये दो उंगलियां इकट्ठी करती है, ये है दृढ़ता की निशानी और ये है उस एक के तरफ की उंगली। तो जब बाबा की याद और अपनी दृढ़ता होती तो बस वाह, सफलता हमारे साथ है। तो इस मुरली की ही बातें उठा करके मैं कुछ और बातों को स्पष्ट करने चाहती हूँ, क्योंकि एक तो बाबा ने ये बताया है कि संसार की हालत जैसे ही और गमसान की होती जाए, आप बच्चों को अपनी स्थिति इतनी ही मजबूत, अचल, अडोल बनानी होंगी ताकि प्रकृति आपके ऊपर अपना प्रभाव न डाले, परंतु आप प्रकृति पति, प्रकृति जीत बन करके अपनी अचल स्थिति से अन्य आत्माओं को भी सहयोग दे सके। ये हमें पता नहीं होगा कि कौन सी घड़ी आएंगी जो हमारी अंतिम घड़ी है, परंतु उस अंतिम घड़ी की तैयारी हमको कब से करनी है। बाबा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत समय से हम लोग कर चुके हैं, परंतु बाबा को भी हमने बहुत इंतजार कराया है। आप सोचो बाबा कब से हम सबका आह्वान कर रहे हैं, आओ मीठे बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ मेरे पास, और तो भी हम बाबा को ढीला ढाला कहते हैं, हाँ बाबा देखेंगे, करेंगे, आएंगे। तो बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताई उस मुरली में कि जिस समय काल का बुलावा होता, आप उस घड़ी उसको पोस्टपोन कर सकते? क्या आप काल को कह सकते हैं कि दो दिन का काम बाकी है हमारा, हम दो दिन का काम उतार के फिर आपके बुलावे को मानेंगे? भगवान का बुलावा तो छोड़ो, परंतु काल के बुलावे को भी कोई टाल नहीं सकता। तो भगवान तो बुला ही रहा है, तो भगवान तो बड़ा रहम बाप और माँ के रूप में हमारी नाजुक बातों को, नखरेबाजी को सुन रहे हैं, परंतु आखिर भी तो समय की घड़ी भागती जा रही है। और 99 के लिए बाबा ने कहा कि उस समय भी हाँ कुछ हलचल होंगी, परंतु मैं 2015 के लिए सोचती हूँ कि कईयों ने मुझे ये कहा है कि ये वर्ष बड़ा भारी बीता है, कईयों ने अपने लौकिक परिवार के हिसाब से ये मुझे शब्द कहे होंगे, कई खुद अपनी तबीयत के कारण ऐसे कहते हैं, और किन किन देशों में जो हालतें चल रही है वो देख करके ये शब्द कहते हैं। मैं समझती जैसे ही ये वर्ष आरंभ हुआ तो उस समय मिडल ईस्ट वालों ने, कईयों ने मुझे कहा कि अभी पता नहीं क्या होगा, और फिर अभी मैं खुद ही जब बेलग्रेड में थी, वियना में थी, वहां पर मैंने देखा कि किस तरह से सीरिया के, अफगानिस्तान के लोग वहां पर हजारों की संख्या में पहुंच गए हैं, कितने एम्बुलेंसेस, कितने पुलिसमैन वहां खड़े हैं उनको मदद करने के लिए। क्या करें, जिन्होंने अपना जान धोखे में डाल करके इतनी खौफनाक यात्रा करके दर पर आकर पहुंचे हैं, तो उनका क्या किया जाए? आखिर भी तो एक मानव परिवार है, उनको कुछ सहयोग देना होगा। तो ये जो वर्ष अब तक बीता, कितनी बातें जो हम एक साल पहले, दो साल पहले भी नहीं सोच सकते थे कि ये सब कुछ होगा, और दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि बाबा ने पहले से ही बता दिया, बाबा पहले से ही जानते, तो बाबा ने हमें पहले से ही बता दिया कि ये सब कुछ होने वाला है। तो क्या उस घड़ी हम क्या सोचते थे? कई तो बाबा के नए नए बच्चे हैं, परंतु कई तो बाबा के 10, 20, 30, 40 साल, 50 साल वाले बच्चे भी बैठे हैं, उनको भी मैं पहचान रही हूँ। तो हम जब बाबा के ये शब्द सुनते थे, बच्चे संसार की हालतें और बिगड़ती जाएंगी, साकार मूल्यों में ये शब्द आता, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, तो क्या उस घड़ी हम खुद दुखी होंगे, या उस घड़ी हम दुख में इतना डर जाएंगे जो हमें कोई सहयोग देवे, या उस घड़ी हमारी स्थिति उन दुख के पहाड़ों को देख करके ऐसे ऊंची स्थिति होंगी जो हम फरिश्ता बनकर अन्य आत्माओं को कुछ परमात्मा की याद दिलाएंगे, परमात्मा के द्वारा उनों को कुछ हिम्मत दिलाएंगे, कुछ प्यार कुछ शक्ति उन आत्माओं को मिले, ऐसे हम उन्हों को दृष्टि दे सकेंगे। तो ये सब बातें अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि होने वाली है, हम तो ये कहेंगे कि अभी हो रही है। कदम कदम पर अनेक बातें इस प्रकार की हम देखते जा रहे हैं। और बाबा तो स्पष्ट कहते हैं, प्रकृति बिल्कुल खड़ी है एक ताली बजने के लिए। बाबा एक ताली बजाएगा, ड्रामा एक ताली बजाएगा, तो बस प्रकृति का हलचल शुरू हो जाएगा। तो प्रकृति बस इतना तैयार बैठी है, सिर्फ अभी तक क्यों नहीं वो ड्रामा की परिवर्तन की सीन आ रही, क्योंकि बाबा के बच्चे अभी तक अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो एक तो बाबा ने कहा है कि जब आप कहते हो सूर्यवंशी, तो आप सूर्य को याद करो। हाँ, सूर्य कहाँ पर उदय होता, कहाँ पर अस्त होता, और फिर एक तरफ आता दूसरी तरफ जाता, परंतु सूर्य की जो स्थिति है वो बदलती नहीं है। संसार घूमता रहता, और इस कारण से हम कहेंगे भी सूर्य नजर है, अभी सूर्य नहीं नजर है, परंतु सूर्य में कुछ परिवर्तन नहीं आता। सूर्य वही का वही सदा ही वो प्रकाश देता रहता, सदा ही वो गर्माइश देता रहता। तो क्या सूर्यवंशी घराने में आने के लिए आप बच्चों ने अपनी ऐसे स्थिति बनाई है कि हम बिल्कुल अपनी स्टेज ऐसे बना कर रहें जो औरों को लाइट मिलती रहे, औरों को प्रेरणा मिलती रहे, औरों को वो प्रेम का अथवा सहानुभूति का वो सकाश मिलता रहे, वो गर्माइश भी पहुंचती रहे। तो बाबा की अव्यक्त मुरली मुझे लगता है कि इतना अच्छा आईना होती जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं और आगे हमको कहाँ तक जाना है। तो आप सूर्य को ही सामने रखो बुद्धि में और अपने से पूछे कि क्या हम सूर्यवंशी घराने में आने के योग्य है, हमने ऐसे अपनी तैयारी की है जो हमारी स्थिति बहुत ऊंची बिल्कुल अचल अडोल बनी रहे। उसके लिए हमें किस प्रकार से अभ्यास करना होगा, आप देखेंगे कि जब कई बातें सामने आती है तो उसमें जो हमारे संकल्प चलते हैं, हमारे संकल्प किस स्पीड से चलते हैं। आज तक भी कभी कभी ऐसे बात होती है, थोड़ी बात सुनी परंतु इमेजिनेशन ज्यादा ही हो गया, और इमेजिनेशन जब आता है अनुमान, जब अनुमान आ जाता तो कितने फास्ट संकल्प चलते हैं, ऐसे होगा ऐसे होगा, इसने ऐसे किया होगा, ऐसे बोला होगा, बहुत फास्ट स्पीड से संकल्प चलते हैं। और यदि आज की छोटी छोटी बातों में हमारी एनर्जी इस प्रकार से जा रही है तो फिर हमारी स्थिति आज किस तरह की है। तो व्यर्थ संकल्पों की बात आप देखो, बाबा ने कब से हमें ध्यान खींचवाया है। जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए, वो पहले वर्ष में ही 1969 में ही व्यर्थ संकल्पों के ऊपर बाबा समझाते रहे हैं, समझाते रहे हैं, समझाते रहे हैं। ये तो बाबा बहुत मेहरबान टीचर है, और ड्रामा भी बहुत मेहरबान है कि वही लेसन हमको बार 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 बाबा पक्का कराते हैं, नहीं तो कोई भी टीचर थक जाए। कल अब ऊपर में अभी डबल फॉरनर्स का प्रोग्राम शुरू हुआ, विशेष जो एक सप्ताह का प्रोग्राम, जैसे यहाँ आपका प्रोग्राम चालू है वैसे ऊपर में भी चालू है, परंतु उन्होंने खास पूरे 7 दिन की टॉपिक रखी है, ओरिजिनल एफर्ट ओरिजिनल लव, आदि, आदि वाला पुरुषार्थ और आदि वाला प्यार। तो ये जो फर्स्ट लेसन की बात आती है परमात्मा के बारे में, जो बाबा डिटेल में समझाते रहे, मैं समझती जब मैं छोटी थी और मैं दादी जानकी के पास जाया करती थी, उस समय तो हमको ये बताते थे कि शिव बाबा का रूप ज्योति है परंतु अंगोष्ठाकार है। ये है 1957 की बात। परंतु फिर बाबा उसको क्लियर करते करते आखिर अभी बाबा ने 63-64 में ये स्पष्ट किया। मक्खियों को भी ज्ञान सुनना पसंद आता। तो 1963-64 में आखिर बाबा ने यह स्पष्ट किया कि शिव बाबा है ज्योति बिंदु। तो जो ज्ञान की डिटेल की बातें हैं बाबा धीरे 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 स्पष्ट करते रहे, परंतु जो फर्स्ट लेसन था, जो आदि में पुरुषार्थ दादियों ने किया, दादाओं के द्वारा आप लोग इतना नहीं सुन पाते हो, मीन्स दादा विश्व किशोर हमेशा कहते थे बहने आगे हो, वो कम ही बोलते थे। दादा विश्व रतन की भी यही बात होती थी, चंद्रास दादा की भी यही बात होती थी। तो मैं दादियों का ही वर्णन करती हूँ, बेशक दादाएं भी उस समय थे, परंतु हर दादियां हमें यही बताती है कि जिस समय हम पहले बाबा के पास आए, ओम की धुनि से ही, चाहे बाबा की दृष्टि से ही, हम लोग बिल्कुल देह से न्यारे आत्मा हो, ये हम अनुभव करते थे। और फिर जो हमारा दिन भर का पुरुषार्थ चलता था वो भी आत्म स्थिति, हम अपने को मन मनाभाव में स्थित करते थे, तो भी फर्स्ट पुरुषार्थ हमारा वही। आप सोचो 1936-37 की बातें आज तक भी बाबा को हम सबके लिए अंडरलाइन करनी पड़ रही है। तभी मैं कहती हूँ कि कितना टीचर हमारा रहम दिल है, जो फर्स्ट लेसन आज तक भी हमें अंडरलाइन करते 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 बाबा नहीं थकते। बाबा तो चाहते हैं कि हमारी वो स्थिति बन ही जाए। तो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, जब आत्म स्मृति रहती मैं कौन हूँ, तो जब हम अपने मन के संकल्पों पर कंट्रोल करने लगते हैं, और दो प्रकार का कंट्रोल चाहिए, एक तो योग के समय, कई है जो हमें कहती हैं आज तक भी, हमें कैसे पता चले कि हमारा योग लग रहा है या नहीं, तो एक तो अपने संकल्पों की जानकारी से पता चलता हमारे संकल्प कहाँ जा रहे हैं। आत्म स्मृति, बाबा के गुण, बाबा का संबंध, ज्ञान की गहराई का अनुभव, जो भी बाबा डिटेल में बातें बताते, योग में हम वो अनुभव करते। यदि मेरे संकल्प उस तरफ चल रही हैं तो मेरा योग लगता जा रहा है, और हाँ राइट ट्रैक पर सब कुछ चल रहा। परंतु योग के समय भी मानो कि 45 मिनट्स हम बैठते हैं, आधा घंटा हम बैठते हैं, खुद जाने और भगवान जाने, और कोई तो नहीं जान सकता। बाबा कहते हैं कि आपका पुरुषार्थ बिल्कुल गुप्त है, सही बात है। तो अपने संकल्पों को चेक करना होता, हमारे संकल्प कहाँ तक बाबा की तरफ जा रही हैं। और फिर न सिर्फ योग संकल्पों की बात है, परंतु बीच बीच में फिर वो संकल्प शांत होते जाते हैं, और फिर संकल्प की जो बात है वो अनुभव हमारी होती जाती है। तो संकल्प को कंट्रोल करने की बात हम शुरू करते हैं योग अभ्यास से। और यदि हम अच्छी तरह से बैठ करके अपना टाइम टेबल में योग अभ्यास के लिए हम टाइम नहीं बनाते हैं, तो वो हमारा प्रैक्टिस कभी नहीं हो सकता। हाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते मुझे याद करो, परंतु वो तब होगा जबकि अभ्यास करें। पहले तो शांति में बैठ करके हम उस बात का अपनी संकल्पों को चेक करें कि एक तरफ बाबा याद आया, दूसरी तरफ सेवा याद आई। एक तरफ बाबा याद आया, फिर फलाने ने ये बात कही, वो बात याद आई, तो सब मर्ज हो जाए और हमारी संकल्प शिव बाबा के साथ बिल्कुल जुट जाए आत्म स्मृति से और बाबा की याद से। तो हमारा योग, हमें अपनी फीलिंग आएंगी कि जो हम चाहते हैं, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, आदत, वो हमें सब अनुभव हो रहा। ये शब्दों की बात नहीं, परंतु हमें खुद पता चलेगा कनेक्शन जुटा है तो हमें ये प्राप्ति है। तो जो संगम युग में विशेष हमें प्राप्ति हो सकती, हमें उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना होगा। कोई मेहनत की बात नहीं, बाबा को मेहनत शब्द पसंद नहीं आता, परंतु मोहब्बत, बाबा के प्यार में हम अपने मन को बाबा की तरफ लगाते जाएं। जो हमारा वो आधे घंटे का 45 मिनट्स का अभ्यास होगा, उस आधार पर फिर दिन भर जो बातें चल रही है हमारी, किस प्रकार की चल रही है। कल की मुरली में तो बाबा ने ये भी कहा कि ऐसे नहीं कि नेगेटिव संकल्प आए फिर आप उसको परिवर्तन करके पॉजिटिव बनाओ, नहीं, वो भी नहीं। एक नेचुरल स्वाभाविक हमारे संकल्प ही चले पॉजिटिव, चले पॉजिटिव लेवल पर। और बाबा कभी भारत से बाहर नहीं निकले। लास्ट अंतिम वर्षों में तो बाबा पांडव भवन के गेट से भी बाहर नहीं निकले, तो भी हम अवश्य कहेंगे कि बाबा विश्व कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा ने अपनी मनसा सेवा से, अपनी शुभ भावना से, अपने श्रेष्ठ बोल से जो सेवाएं उस समय भी की और आज भी कर रही हैं, विश्व की सेवा का आधार वो सारा है। तो मैं क्यों ये बात कहती कि ऐसे नहीं कि आप कहेंगे कि हम सिर्फ भारत में बैठे हैं तो हम विश्व कल्याणकारी कैसे हो सकते। मम्मा बाबा हर बात में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, अपने मन से क्या कर रहे हैं, वचन किस प्रकार के हैं, हमारे संबंध, हमारे कर्म किस प्रकार के हैं, उस आधार पर या तो हम मास्टर विश्व कल्याणकारी बनेंगे या तो जैसे बाबा ने कहा हद का कल्याण करने वाले। बस अपनी लिमिट हम खुद ही बना लेते, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इतना ही करना है और कारोबार में मुझे नहीं जाना है, परंतु विश्व कल्याण का तो कुछ और ही स्टेज। तो कहने का मतलब कि जबकि बाबा इतना तक हमें कहते हैं कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव करने में आपको टाइम लगेगा, आपकी एनर्जी खर्च होंगी, परंतु एक नेचुरल दिन भर का वो अटेंशन रहे हमारे संकल्प की क्वालिटी के ऊपर। और आप सोचो कि हमारे मुख से किस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं। यदि कुछ तेज निकल रहे हैं, कुछ थोड़े कड़वे निकल रहे हैं, उसका प्रूफ है कि अभी तक हमने वो बाबा का इतना प्यार नहीं लूटा है जो बाबा हमें दे रहे हैं। यदि हमने बाबा के साथ संबंध जोड़कर जो बाबा हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं वो अपने में भरपूर हमने किया होगा, तो हमारी जुबान किस प्रकार से होंगी, हर शब्द ऐसे होगा जो अनेकों का उत्थान करने वाला, अनेकों को सहयोग देने वाला, मदद करने वाला। तो हर बात का बाबा बहुत क्लियर पिक्चर देती हैं। तो दिन भर का कनेक्शन योग में बैठने का जो समय होता, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि दोनों का कनेक्शन है, परंतु ये जो बाबा कहते हैं कि आपकी संकल्प हर समय पॉजिटिव रहे, वो भी हमारा योग का कनेक्शन। योग में हमने अभ्यास किया है बहुत श्रेष्ठ सेल्फ रियलाइजेशन का, स्वयं के दर्शन का, प्रभु दर्शन के संकल्प करने का, तो वो जो हम कंट्रोल अपने ऊपर ला रहे हैं, स्वराज फिर से प्राप्त करते जा रहे हैं, तो दिन के समय जो भी बात सामने आएंगी, कल परसों बाबा ने कहा, बाबा मिलिट्री वालों को कहते हैं अटेंशन प्लीज, बस दो अंग्रेजी शब्द थे अटेंशन प्लीज, और बाबा तो हमें कहते ही हैं, परंतु हम खुद अपने को कहें कि हमारे संकल्प अभी कहाँ जा रहे हैं। एक मंत्र है जो बाबा देती हैं और दादी जानकी उसको बहुत कई बार उठाती रहती है, थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले सोचो। मतलब कोई बात मुझे पसंद नहीं आई और मैंने अपने संकल्प उस प्रकार से चला लिया, कितना टाइम लगेगा संकल्पों को वापस कलेक्ट करने में, फिर अपनी भावनाओं को शुद्ध बनाने में, श्रेष्ठ बनाने में। और जबकि हम खुद अपने को इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार के आज तक भी मेरे रिएक्शंस किस बात में होते हैं, तो मानो कि कोई बात हो रही है, मैं अपने को जानती हूँ कि हाँ एक मास पहले, एक सप्ताह पहले इस बात का मुझे रिएक्शन जरूर होता था, आज स्वराज अधिकारी होकर मैं वो नेगेटिव संकल्प को शुरू ही न होने दूँ। मैं जानती हूँ एक बारी वो शुरू हुआ, फिर अपनी फीलिंग्स को शुद्ध रखना, श्रेष्ठ बनाना, उसमें बहुत मेहनत लग जाएंगी और वो बीच का जो समय मेरा खोल जाएगा वो फिर वापस मेरे हाथ नहीं आएगा, वो जो शक्ति मेरे से खो जाएंगी वो मैं फिर दोबारा कठिन नहीं कर पाएंगी। तो हाँ ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने में मेहनत करके हमने किया भी, परंतु समय भी बर्बाद और हमारी शक्ति भी बर्बाद और हमारी खुशी भी गायब। तो मुझे खुद को इतना जानना होगा ताकि मैं पहले से ही, सोचने से पहले ही अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाकर रखूं। इतना तो खुद अपने आप को जान सकते हैं ना, बाबा तो देख रहे हैं, बाबा तो जानते हैं, परंतु जब तक हम खुद अपने आप को नहीं जानते तब तक हम इस प्रकार का जो आंतरिक बाबा पुरुषार्थ के लिए कह रहे हैं वो हम नहीं कर पाते। तो दिन भर का स्वराज अधिकारी, अपने संकल्पों पर कंट्रोल रखना। जब हम ऐसे व्यर्थ को बिल्कुल अपने जीवन से समाप्त करते जाएंगे, और हाँ हो सकता है कि एक दिन में भी ये पुरुषार्थ हो जाए और आप एक दिन के अंदर ही अपना वो संस्कार चेंज करके नया से बना लो, परंतु फिर बाबा ये भी कहते हैं कि बहुत काल का हिसाब है, जितना समय हमने वो स्थिति अपनी बनाकर रखी होंगी उतना समय फिर हमें वो राज अधिकारी भी मिलेंगे। नहीं तो हर बात का कनेक्शन, हर बात का हिसाब। तो यदि आज से जो कुछ भी हुआ, अब तक भी हमारी स्थिति ऐसे अचल अडोल नहीं बनी है, कोई हर्जा नहीं। आज भी बाबा ने बहुत अच्छी बात, मैं समझती 2-3 सप्ताह पहले की बात थी, जब बाबा हरेक का रिपोर्ट देख रहे थे, तो बाबा ने उस समय भी अव्यक्त रिविजन कोर्स मुरली में कहा, बाबा माता पिता के रूप में आपका रिकॉर्ड चार्ट देख रहे थे, परंतु आगे वो रहम का माता पिता का रूप नहीं होगा, फिर तो वो हिसाब का रूप होगा, धर्मराज का रूप होगा। परंतु उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, यदि आज जो बाबा हम आत्माओं के ऊपर इतना रहम करके हमें हर प्रकार से मदद कर रही हैं, हम वो मदद लेकर के उसका हम फायदा उठाते जाएं, तो आज से भी वो बहुत काल का संस्कार हमारा बन सकता, जिस संस्कार से हम देखेंगे कि व्यर्थ जितना समाप्त हुआ, संकल्प में व्यर्थ कम, तो हमारे बोल किस प्रकार के होंगे, बहुत शुद्ध, बहुत श्रेष्ठ। और बाबा ने ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात कह दी कल, कि यदि कुछ भी अभी तक अंदर सूक्ष्म भरा हुआ है, ऊपर ऊपर से ठीक लग रहा, हाँ पुरुषार्थ चालू है, सब ठीक हो रहा, परंतु समय आने पर जिस घड़ी परीक्षा आती, उस घड़ी फिर जो अंदर सूक्ष्म है उसका बाहर का रूप बन जाता। तो आप सोचो कि कितना गहराई से हमें पुरुषार्थ करना होगा, बिल्कुल आत्मा को स्वच्छ साफ बनाने के लिए, ताकि हमारी स्थिति ऐसे रहे जो हम सूर्यवंशी बन सके, वो सदा प्रकाश देते रहे, सदा उसमें कोई बादल बीच में न आए। तो एक तो व्यर्थ संकल्पों की बात, दूसरा भी उसके कनेक्शन की ही बात बाबा ने बताई, परंतु उसका और भी इंटरेस्टिंग डिटेल बाबा ने बताया, किसी भी बात के हद में हम न जाएं। आप सोचो जबकि हम दाव लगाते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए, विश्व मीन्स बेहद, और हम ये भी कहते हैं बेहद बाप के हम, बेहद के बच्चे, बेहद परिवार के हैं। अभी भी थोड़े समय के अंदर ही हॉल तो 3/4 तो अभी भर गया, पहले जब शुरू किया 5:30 बजे आधा था, अभी 3/4 बन गया। परंतु कहने का मतलब कि बेहद का परिवार बिल्कुल नजर आ रहा है यहाँ। तो हर बात बेहद की, और जब कोई भी बात की हम हद में आ जाते हैं, उसकी निशानी, और आप अपनी भाषा को देख लेना, आज से रात्रि तक भी और कल फिर दिन भर भी आप अपनी भाषा को चेक करते जाना कि मेरा शब्द कितने बारी आप यूज करते हैं। मेरा कौन? मेरा बाबा। मेरा कौन? मेरा तो स्वर्ग, मेरा तो ऊपर का घर, बाकी और कुछ मेरा क्या? किस बात पर भी हम दाव नहीं रख सकते हैं कि ये मेरा है। जिसको भी आप मेरा कहेंगे वो तो आज है कल नहीं है, अपनी शरीर को भी मेरा नहीं कह सकते, आज है कल कहाँ होगा, आत्मा कहाँ शरीर कहाँ क्या मालूम। तो जबकि इस पर ही हम दाव नहीं रख सकते, तो और कोई बात पर भी हम नहीं रख सकते। और फिर बाबा ने कहा कि ये तो चलो फिर भी स्थूल बातें हैं, अपना देह, देह के संबंध, देह के संबंध कितने फैलाव के हैं, और सबके लिए हम कहते हैं मेरा 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 मेरा, आज है कल क्या मालूम। जिंदा होते हुए ही वो कहेंगे नहीं आप हमारे नहीं है, शरीर छोड़ने के बाद तो छोड़ो, परंतु अभी ही कहेंगे। तो हम मेरा शब्द, बाबा के जो ब्राह्मण बच्चे हैं, मैं नहीं समझती कोई स्थूल पोजिशन, स्थूल प्रॉपर्टी, देह या देह के संबंध के लिए कहेंगे मेरा। परंतु फिर बाबा ने कहा कि जो सूक्ष्म में भी मेरा शब्द आता, मेरी बुद्धि, मेरी विशेषता, मेरे गुण, मेरी सेवा, मेरा कार्य, आप सोचो कि ये सब किस प्रकार की भाषा है। बिल्कुल बहुत बहुत हद की भाषा है। भाषा तो क्या, बुद्धि ही इतनी हद में है जो मुख से वो शब्द निकल रही हैं। अब बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, क्या ये आपका है? आपके पास ये ज्ञान था? आपके पास दिव्य बुद्धि थी? आपके पास ये गुण थे? आप ये कार्य करने के योग्य थे? ये सब कहाँ से आया? बाबा ने बहुत प्यार से याद दिलाया कि ये तो प्रभु प्रसाद है। प्रभु ने आपको इतना प्यार से ये सब कुछ दिया है, आप उसको थैंक्स दियो, उसकी ग्रैटिट्यूड मन में होंगी, उसकी पहचान याद रहेंगी, तो फिर उसमें कोई दे का भान अभिमान नहीं आएगा। और फिर जो कुछ प्रभु ने हमें प्रसाद दिया है उसे ऑटोमेटिकली ही बेहद की सेवाएं होती जाएंगी। अब तक तो मैंने सिर्फ दो निशानियां बताई, एक तो अचल अडोल स्थिति जिसमें कोई व्यर्थ बात न हो, और दूसरा जो बाबा ने कल बात उठाई कि बिल को कोई हद में न आए, और तीसरी बात इनकी कनेक्शन से ही है, नेगेटिव को समाप्त करके सिर्फ पॉजिटिव स्थिति बनाकर रखें। तो मैं सोचती हूँ कि लिस्ट तो आपके पास बुद्धि में है ही, कोई भी आपसे पूछेगा कि संपन्नता की क्या निशानियां है, तो मैंने तो 3 बातें बताई, आप तो 10 बातें बता सकेंगे। आप अपने को आज का होमवर्क देना, आज रात्रि को आप बैठ करके नोट करना, अपने पास मंथन करना कि हाँ 7 और बातें संपन्नता की क्या क्या है, और आपको सहज ही बाबा की मूल्यों को याद करो और आपको सब बातें नोट होती जाएंगी। परंतु अभी मैं थोड़ी कुछ एग्जाम्पल्स देनी चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि जिन्होंने साकार बाबा को देखा उनका तो भाग्य था, तो मैं भी उसमें अपने को मानती हूँ कि बेशक बचपन में ही बाबा को देखा और फिर लास्ट में 1 वर्ष तक बाबा को पहचान सहित देखा, परंतु जो बाबा कहते हैं ना कि डबल लाइट फरिश्ता, वो बाबा साकार में होते ही वो अव्यक्त नजर आते थे, डबल लाइट फरिश्ता बिल्कुल हाजिर थे हम सबके सामने। परंतु उसके बाद भी जिन आत्माओं ने बाबा से इतनी पालना ली थी, बेशक उस समय 69 में नक्शा मालूम नहीं था कि अभी और आगे क्या होगा, कईयों ने सोचा कि बस अभी तो घर जाने का समय आ गया, और उस समय दादियों ने ये नहीं सोचा, उस समय बड़ी दादी दादी जानकी मुझे कहती थी कि तुम लंदन जाओ, तो उनों को क्या सामने था, उनों का था कि बेहद विश्व की सेवा अभी होने वाली है, कई कहते थे बस अभी तो घर जाने का समय आ गया, और वो कहते थे अभी तो विश्व की सेवा बाबा एंजल बन करके करने वाले हैं। तो उनों की बुद्धि उस समय भी बेहद के विश्व में थी, और रियलिटी में बाबा एंजल बन करके ही विश्व की सेवाएं आरंभ की तुरंत ही। तो दादियां जो आज तक भी हमारे सामने हैं, अभी तो मैं देखती हूँ कि बाबा के कई नए नए बच्चे हैं जिन्होंने दादी प्रकाशमणि को भी शायद नहीं देखा था, कहानियां बेशक सुनी है, परंतु 2007 के बाद भी बाबा के कार्य की, बाबा के बच्चों की बहुत संख्या वृद्धि को पा चुकी है। तो कई हैं जिन्होंने दादी जी को भी फिजिकल साकार में नहीं देखा, कहानियां बेशक सुनी है, और जो दादी ने सेवाएं की उसका प्रूफ आप सब ये देख रहे हो, शांतिवन है दादी जी की सेवाओं का प्रूफ। परंतु आज तक भी हम सबका ये भाग्य है कि दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी रतन मोइनी और भी दादियां हैं, परंतु ये खास 3 हम सबके सामने बिल्कुल हाजिर है। तो उनों के प्रैक्टिकल जीवन को हम देखते हैं। तो मैं क्यों ये बात कहती, क्योंकि थियोरी की बात है कि हाँ अपनी स्थिति इतनी ऊंची हो जो सदा हम प्रकाश में रहें, या नेगेटिव कभी ना आए, कांस्टेंट पॉजिटिव हो, परंतु ये थियोरी की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल इन आत्माओं ने करके दिखाया है। और बात ये तो दादी जानकी का तो शब्द आप लोगों ने शायद सुना होगा कई बारी, मैंने तो बहुत बारी सुना है, कहती है कि मैं बाबा से रोज पूछती हूँ, बाबा आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि आप सोचो कि आपके पास कोई गाड़ी हो 20 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, 100 वर्ष पुरानी, आप उसको रोड पर लेके जाएंगे क्या, आप कहेंगे नहीं बस गैराज में ही रखी रहे। और दादी जानकी की गाड़ी अभी 100 साल तक आकर पहुंची है, वो उससे आज तक भी कितनी सेवाएं कर रही है। तो क्यों, बाबा हम सबके सामने प्रैक्टिकल साकार में एग्जाम्पल्स रखे हैं। दादी गुलजार की भी बेशक शरीर ने कितनी भी परीक्षाएं पास की हो, आज तक भी हमारे सामने। दादी रतन मोइनी की आयु 90 years, और आज हम उसको कहते हैं यूथ दादी. स्ट्रेंज परंतु रियलिटी. तो ये तीन दादियां भी जो बाबा ने हम सबके सामने एग्जाम्पल्स रखी है, उन्हों को देखते हैं तो रियली कितनी भी बातें उन्हों के सामने आई हो, पर्सनल, चाहे यज्ञ के सामने आई हो, चाहे बेहद के परिवार के बाबा के बच्चों के सामने आई हो, उन्होंने अपनी स्थिति किस प्रकार से बनाकर रखी है वो हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है. और मनुष्य होते, मानव है, साकार बाबा के लिए तो सब यही कहते थे, परंतु ये तो भागीरथ है ना, शिव बाबा उनमें प्रवेश किया है तब उनकी स्थिति इतनी ऊंची है. परंतु ये तो मनुष्य आत्माएं, और उसमें भी तीन बहने विदाउट एजुकेशन, कमाल है. एक बहन है जो दादी को लंदन में 30 साल से जानती है, तो उसने एक बुक लिखा है अभी, जो अभी उसकी लॉन्चिंग दिल्ली में होनी जाएंगी नवंबर मास में, अ सेंचुरी ऑफ सर्विस. दादी जान के अ सेंचुरी ऑफ सर्विस, 100 वर्ष की सेवाएं. क्यों? क्योंकि कईयों को शायद पता होगा या नहीं, परंतु दादी 2 वर्ष की आयु में भी पहले यादाश्त दादी को है राम की धुनी, फर्स्ट मेमोरी. फिर उसके बाद खुद प्रार्थना करना आदा दादा, तो बचपन से ही सेवाएं दादी की चालू थी. परंतु उसमें उसने ये लिखा है खास कि वो कंपेयर कर रही है कितने गुरु भारत से आए 60s में, 70s में, उसके बाद भी 80s, 90s में, परंतु दादी के अंदर क्या थी जिस कारण से दादी आज तक सेवाएं कर रही है और आज तक इतना सिंप्लिसिटी से चल रही है. मैं नाम नहीं वर्णन करती, उसने तो बुक में सब नाम बता दिए हैं, परंतु वो कंपेयर कर रही है. दूसरे लोग आए, उन्होंने अपने पास सब इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, बिल्डिंग्स इकट्ठी किए, गाड़ियां मोटरें इकट्ठी की, परंतु दादी, दादी छोटा सा सूटकेस लेके आई लंदन, और जिस घड़ी बाबा ने वापस भारत बुला लिया, बस वही छोटा सा सूटकेस अपने लिए लेके आई, नथिंग एल्स, अपने लिए कुछ नहीं रखा. तो देखते हैं कि जो त्याग, जो तपस्या का फाउंडेशन है, उस आधार पर ही भारत की सेवाएं चाहे विदेश की सेवाओं का आधार है. यहाँ भी जो दादी जी को जानते हैं, बहुत वर्षों से दादी के साथ संपर्क रहा, उन्होंने भी देखा कि दादी को कभी मैं शब्द मुख पर आता ही नहीं था. दादी अपने लिए भी वर्णन करती थी तो शब्द दादी के मुख से क्या निकलता था, दादी आज दिल्ली जा रही है, मैं दिल्ली जा रही हूँ, दादी के मुख पर मैं शब्द था ही नहीं. मैं तो छोड़ो, मेरा भी छोड़ो, दादी आज फलानी जगह जा रही है. तो इतना बिल्कुल हर प्रकार से बुद्धि समर्पण. बाबा ये नहीं कहते कि घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आप यहाँ आके बैठ जाओ, परंतु बाबा ये तो जरूर कहते हैं बुद्धि से देह सहित देह के संबंध सब भुला लो. तो विदाउट एजुकेशन, तीन दादियों में से या बड़ी दादी को भी देखें या दीदी को भी देखें, किसको भी एजुकेशन का बैकग्राउंड कुछ नहीं. हाँ, 2 दादियां इंग्लिश थोड़ा बहुत जानती है, दादी प्रकाशमणि, दादी जानके, परंतु और तो बहुत छोटी थी जब आए, तो उन्होंने सिंधी सीखा और फिर बाद में हिंदी सीखा बस. विदाउट एजुकेशन, विदाउट लौकिक क्वालिफिकेशन, कुछ और स्थूल उनके पास नहीं था, और सारा विश्व की सेवा हो चुकी है. क्यों? बाबा कांस्टेंट वो यही कहेंगे, बाबा कभी भी वो ये नहीं स्वीकार करेंगे मैंने कुछ किया. ये तो प्रैक्टिकल हम देखते हैं आज तक भी, बाबा उंगली ऊपर, परंतु साथ ही साथ न सिर्फ बाबा परंतु खुद अपनी समर्पण जीवन से उन्होंने अपना सब कुछ बाबा के सामने ऐसे समर्पण कर लिया जो बाबा उन्हों को निमित्त बनाकर उन्हों के द्वारा बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं और इतना कर चुके हैं। कुछ वर्ष पहले दादी गुलजार के साथ लेन देन हुई थी, जब दादी विदेश के कार्य के लिए कुछ आई थी तो दादी ने बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज लाया बाबा का। कुछ हम सोच रहे थे बड़ा कार्य होने वाला है और हुआ भी वो, परंतु दादी का संदेश क्या था कि ऊंट तो चला गया सेवा के हिसाब से, जो सेवा का ऊंट था वो तो चला गया, बाकी रही पूछ। ये 1993 की बात है, मीन्स जो इतना पहला स्थापना का कार्य वो तो सारा हो चुका है, बाकी रही पूछ। बाबा की दृष्टि में तो बस सेवा बाकी क्या है, बस इतनी सी बाकी रही हुई है, परंतु वो भी क्यों रही हुई है, ताकि हम भी अपना कुछ भाग्य बना सकें। तो जितना हम अपना भाग्य बनाने चाहें हम बना सकते, जितनी हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने चाहें हम बना सकते, और एग्जाम्पल्स को देख करके उनों के द्वारा प्रेरणा भी ले सकते। जैसे ही उन्होंने मैंपन का त्याग किया और बाबा 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 को ही सामने रखा, क्या ये डिफिकल्ट बात है? कौन कहेगा डिफिकल्ट है, छोटा बच्चा भी कहेगा बाबा बाबा बाबा, परंतु हमारे अंदर दिल के अंदर भावना के अंदर वो बिल्कुल ऐसी बात बैठ जाए जो और कोई प्रकार का संकल्प न आए। तभी फिर जो बाबा ने कहा फॉलो फादर, बाबा को फॉलो करें, बाबा के किस प्रकार के संकल्प, बाबा के किस प्रकार के बोल, बाबा का किस प्रकार का व्यवहार कर्म। और जिन्होंने बाबा को ना भी देखा है, दादियों को तो देखा है, परंतु साथ ही साथ बाबा की मुरली रोज सभी सुनते हैं, बाबा की मुरली द्वारा दोनों का साक्षात्कार होता है, निराकार शिव बाबा का और साथ साथ साकार ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा की मुरली। तो न सिर्फ शिव बाबा के बोल परंतु ब्रह्मा बाबा के भी बोल, न सिर्फ शिव बाबा के संकल्प हम सुन रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के भी किस प्रकार के संकल्प चलते हैं विश्व के प्रति, स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति, वो भी हम सुनते हैं। तो बाप दादा का साक्षात्कार करना हो तो बाबा की मुरली द्वारा हम आज तक भी कर सकते। तो वो कंपैरिजन हमारी आदत है कंपैरिजन की, परंतु बहुत करके हम मनुष्यों के साथ कंपैरिजन करते तो उसमें बड़ा दुख होता, जरूर दुख होगा। कई बार आप देखो कि हमारे मन में दुख की फीलिंग क्यों आई है, जबकि बाबा ने सब कुछ दिया है, और आपको तुरंत ख्याल आएगा कंपैरिजन शुरू हो गया किसी न किसी के साथ, किसी न किसी बात के कारण। परंतु इस स्वभाव को भी बाबा दिव्य बना लेते, कंपेयर करो तो बाबा से करो, कंपेयर करो तो अपनी संपूर्णता की स्थिति से करो, तो फिर उसमें क्या होगा, हाँ फास्ट चेंज आती जाएंगी। जब बाबा साकार में थे तो बाबा संदेशियों से पूछते थे कि जो बाबा आप ऊपर में देखते हो और जो बाबा यहाँ सामने है, दोनों में अंतर क्या है। बाबा अपने पुरुषार्थ के लिए ये प्रश्न उनसे पूछते थे तो बाबा को बताते थे कि हाँ वो पवित्रता की रोशनी ज्यादा है या कुछ और जो चमक है वो ज्यादा है, वो बाबा को बताते थे, और बाबा फिर वो बात ध्यान पर रखकर उस बात को फास्ट मेकअप करके अपनी स्थिति को कर्मातीत बना करके वतन में बैठ गए, सेवा कर रहे हैं, बैठी नहीं है अभी भी, सेवा बेहद की कर रहे हैं। परंतु हम भी बाबा को सामने रखें और अपनी संपूर्ण स्थिति को सामने रखें तो फास्ट हम भी जो बाबा चाहते हैं हम कर पाएंगे। ओम शांति।